करता है। स्वमांसम खादयन्ति, अपना मांस काट कर। कितनी पीड़ा होती होगी उस समय। यह नियम भगवान बना रहे, बता रहे हैं। और भगवान ऐसी कल्पना नहीं कर रहे कि ऐसा होता होगा, वही नियम बनाने वाले हैं, वही सब कानून कायदा। और जमराज तो उनके नौकर हैं, उनकी आज्ञा पर काम करते रहते। तो उन लोगों को एकदम तैयार रहना चाहिए जो लोग माता पिता की सेवा नहीं किए, नहीं करते। तो मांस काट काट करके वो खाने को देंगे। यह एक पनिशमेंट हुआ, इसी तरह की बहुत बहुत दंड मिलेगा उन लोगों को। अतः जिन लोगों के माता पिता हैं और जिनका शरीर स्वस्थ है, धन भी है, उन्हें अपने माता पिता की सेवा खूब कर लेनी चाहिए। रामायण में वर्णन है और श्रीमद् भागवत में भी है कि लोग कब तक माता पिता को मानेंगे कलयुग में। नरमान ही मात पिता तब लो, ससुरार प्यारी नहीं जब लो। जिस दिन से ससुराल जाना चालू करते हैं कलयुग में लोग, उसी दिन माता पिता को भूल जाते हैं। अब सारा स्नेह उनका अपने वाइफ में हो जाता है। माता पिता खा रहे हैं कि मर गए हैं, बीमार हैं, कुछ नहीं करते। एक दिन मैं था, कुछ वर्ष पहले अमेरिका में फादर डे पड़ा था, जून में कि कब। तो मैं पूछा कि फादर डे का क्या मतलब होता है। तो पिता का दिन है। तो एक व्यक्ति से मैं पूछा कि आप क्या करते हैं। फोन कर लेता हूँ पिताजी को। फोन क्यों करते हैं। वही ग्रीटिंग करता हूं। तो दूसरा एक भारतीय भक्त था, वो कहता था फोन करके देख लेता है कि मर गया है कि जी रहा है, बस इतना ही सेवा है। फादर डे पर फोन कर लिया, बस पिताजी की सेवा हो गई। इस प्रकार कलयुग में लोग माता पिता को भूल जाएंगे, सारा प्रेम अपनी पत्नी से हो जाएगा। मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं, आप लोग दुखी मत होइए। और प्रत्येक व्यक्ति अपने पर देख भी सकता है कि रियली माता पिता के प्रति हमारा कितना प्रेम है। ये निकल गया। यहाँ भगवान अपने माता पिता से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैं अप्रासंगिक बात नहीं कह रहा हूँ, ये प्रसंग ही आ गया है। और वास्तव में उन बच्चों को तो यह कथा सुन करके अपना भाग्य बनाना चाहिए कि अभी वो समर्थ हैं, माता पिता हैं, तो उनकी सेवा खूब कर लेनी चाहिए, जिससे फिर पीछे पश्चाताप न रहे। भगवान कहते हैं नहीं करने पर दंड मिलेगा, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतम शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो अभिव्रत शोषण मृतः। और आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपने माँ पिता और वृद्ध साध्वी भार्या और शिशु पुत्र तथा गुरु ब्राह्मण तथा शरण में आए हुए प्राणी का पालन नहीं करता है, तो श्वसन मृता, वह सांस लेता हुआ भी मरा है। वास्तव में उसकी सांस भर चल रही है, उसमें जान नहीं है बिल्कुल। इन लोगों का नाम बताए भगवान, किन किन का पालन करना चाहिए। प्रथम मातरम पितरम वृद्धम, इसका एक अर्थ यह है कि माता पिता विशेष करके जब वृद्ध हो गए हों उस समय अवश्य सेवा करनी चाहिए। जवानी के दिन में माता पिता अपेक्षा भी नहीं करते हैं अपने पुत्र से कि हमारी सेवा करे, लेकिन वृद्ध होने के बाद उनकी अपेक्षा होती है। जिस पुत्र को उन्होंने पाला पोसा, बड़ा बनाया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया, विवाह कराया, और वही बेचारे वृद्ध हो जाते हैं, अकल्प हो जाते हैं, काम नहीं होता है उनके हाथ से, शरीर में दर्द रहती है, स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है, उस समय जो पुत्र सेवा नहीं करता है उनकी, वास्तव में वह श्वसन मृत मरा हुआ है, केवल सांस भर चल रही है। माता पिता वृद्ध और भार्या, भार्या का भरण करना चाहिए। भार्या कहते हैं भरण करने योग्या, पति भरण करता है अपनी पत्नी का, इसीलिए पत्नी को भार्या कहते हैं। उसको वस्त्र देकर और अलंकार देकर, घर देकर, सम्मान देकर, भोजन की सामग्री देकर, कई प्रकार से पत्नी का भरण करना पड़ता है, इसलिए उसको भार्या कहते हैं। इस देश में तो इधर स्त्रियां कहीं कहीं पत्नी ही भरण करती है पति का, कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है। और चलो भाई, अगर पत्नी और पति दोनों अगर काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन केवल पत्नी ही कर रही है और पति जी ही भार्या बने हुए हैं, इससे ये तो उल्टा है। ठीक है, देश काल के अनुसार चलेगा, जहाँ जैसे परिवार चलाना है चलाना चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक वे ये है कि पति भरण करे पत्नी का। साध्वी भार्या, जो पत्नी सब प्रकार से अपने पति की ही शरण में है, पति के अलावा किसी को नहीं जानती, तो ऐसी पत्नी का पालन करना चाहिए, भरण करना चाहिए, उसकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। और सुतम शिशु, यदि बच्चा है, पुत्र है और बच्चा है, तो उसका अवश्य पालन करना चाहिए। माता पिता पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और गुरुम, गुरु जिसने ज्ञान दिया है, भगवान की भक्ति दिया है, या गुरु का अर्थ है जिसने कुछ भी सिखाया है जीवन में। और विप्र, ब्राह्मण जो शास्त्रों के अध्ययन में रहता है, बेचारा कमाता नहीं है। और प्रपन्नम, कोई जीव जो शरण में आ गया है, जिसको कुछ नहीं है, ऐसे प्राणियों का पालन अवश्य करना चाहिए समर्थ होने पर, नहीं तो फिर जीवन व्यर्थ है। तन्नावकल्पयो कंसात् नित्यम् उद्विग्न चेतसः मोघमेते व्यतिक्रांता दिवसा वाम नर्चतः। हे पिताजी, हे माँ, हम कंस के भय से आपके पास नहीं आते थे। जो कंस के भय से नहीं आते थे, भगवान की अजीब बोली है। मैं चाहते हुए भी यहाँ से थोड़ी दूर रहता था, पर आपसे भेंट नहीं किया, नहीं सेवा किया, क्योंकि कंस से बहुत भय लगता था। यह बात भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी वसुदेव जी और देवकी उनको मेरा बेटा कह करके गोद से लगा ले, माँ दूध पिलाने लगे, कहते हैं कंस से बहुत भय लगता था। नहीं तो हमको तो ज्ञान था ही कि हमारे माता पिता मथुरा में रहते हैं, यहाँ वहाँ, लेकिन मेरे यहाँ आने पर आप लोगों को और भी कठिन सजा देता, इसलिए मैं नहीं आ पाया। या आप दोनों कंस से बहुत डरते थे, तो ये हमारे जीवन के जो ये दिन बीते हैं, आप वाम अनर्चतः, आप दोनों की अर्चना के बिना, आप दोनों की सेवा के बिना जो हमारा इतना वर्ष बीता है, एकदम मोघ हम व्यर्थ बीत गया। आपकी सेवा के बिना हमारा जीवन का दिन बीता, वो व्यर्थ बीत गया। लेकिन तत्क्षण तो मरहथस्तात मातर नौ परतंत्र, हे माँ, हे पिताजी, हमको क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं परतंत्र था, दूसरे के अधीन, मैंने हम दोनों भाइयों ने आपकी सेवा नहीं की है, यद्यपि आप बहुत दुख में थे तो फिर भी हम लोग सेवा नहीं कर सके, बल्कि हम लोगों के कारण ही आप लोगों को दुख हुआ। हम दोनों भाइयों के कारण आप कारागृह में रहे। जब से कंस ने सुना कि आठवां बच्चा होगा, देवकी के गर्भ से वो वध करेगा उसका, उसी समय से आप दोनों को दुख देना चालू किया। तो मैं सेवा कहाँ से करता, मेरे कारण ही आप लोगों को कारावास हुआ, आपके बच्चे मारे गए, सब तरह से दुख हुआ मेरे कारण। तो मैं तो जन्म लिया केवल आपको दुख देने के लिए। भगवान इस तरह से कोमल बात बोल रहे हैं, करुण बात बोल रहे हैं, लेकिन हमको क्षमा कर दीजिए, कुछ भी है तो मैं आपका पुत्र हूँ, जानबूझकर नहीं, विवशता के कारण मैं आपके पास नहीं आ पाया, नहीं सेवा किया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितौ अंकमारोप्य परिस्वज्या पतुर्मुदम्। इस प्रकार कृपा से मनुष्य श्री विग्रह प्रकट किए हुए श्री भगवान की मधुर वाणी को सुन करके मोहित, दोनों के भीतर पुत्र प्रेम छलछला आया और अंकम आरोप्य अपने गोद में उठा लिए दोनों। श्री वसुदेव जी बलराम जी को लिए गोद में और भगवान को माँ देवकी ली, बाद में फिर वो बदले उठा लिए, अंकम आरोप्य पहले गोद में उठा लिए कहे, और अंक में उठाने के बाद इसके बाद फिर जब जमीन पर खड़े हुए तो आलिंगन किए बहुत देर तक। जो प्रेम शुरू में नहीं उमड़ा वो भगवान की बात सुन करके उमड़ गया। वचन में बहुत शक्ति होती है। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना हो तो उसके लिए वचन की आवश्यकता है, कृष्ण प्रेम वर्धक वचन चाहिए। सिंचन्ता वस्त्रधारा भी स्नेह पासे न चावृतौ, स्नेह के बंधन में वो पूरी तरह बंध गए और आंखों से अजस्र आंसू की धारा बहने लगी। न किंचित उच्चतु राजन वाष्पकंठो विमोहितः। हे महाराज परीक्षित, वे कुछ भी नहीं बोल सके, कंठ भर गया वाष्प से। कभी कभी जब कम वाष्प भरता है तो वाणी निकलती है गदगद वाणी, टूटी हुई वाणी निकलती है, लेकिन बहुत ज्यादा वाष्प भर जाता है, आंसू जब गला में भर जाता है तो उसमें बोली निकल नहीं पाती। तो न किंचित उच्चतु, कुछ भी नहीं बोले वसुदेव और देवकी, इतना गला रुंध गया, केवल रो रहे थे। एवं आश्वास पितरौ भगवान देवकी सुतः। ये वर्णन पहले ही हो चुका है, भगवान ने हथकड़ी बेड़ी खोल दिया था। इस प्रकार माता पिता को सांत्वना देकर और वहीं पर दूसरे रूम में कारागृह में पड़े हुए उग्रसेन जी के पास दोनों भाई गए, अपने नाना के पास गए। नाना को संस्कृत में मातामह कहते हैं और दादा को पितामह कहते हैं, पितामह मातामह, मातामह नाना। एवं आश्वास्य पितरौ भगवान देवकी सुतः। भगवान देवकी नंदन इस प्रकार अपने माता पिता को आश्वासन देकर, मातामहं तुग्रसेनं जदु नाम करो नृपम्। उग्रसेन महाराज को कारागृह से छुड़ाए, उनके चरणों की वंदना किए और जादवों के राज्य पद पर, सम्राट पद पर उन्होंने उग्रसेन जी को बैठाया। यह उसी समय की बात नहीं है, एक दो दिन के बाद या दस दिन के बाद जब कंस के और उसके संबंधियों की अंत्येष्टि क्रियाएं हो गई, उसके बाद की बात। तो भगवान ने उनको जदूनाम नृपम अकरोत, जादवों का नृप किया, राजा बनाया। और आह, जिस समय राज्याभिषेक हो रहा था, मथुरा के राज सिंहासन पर उग्रसेन जी का, तो उस समय भगवान सेवक की तरह खड़े थे। ये प्रश्न हो सकता है कि कंस का वध करने के बाद वह राज्य तो भगवान कृष्ण का था, उन्होंने क्यों नहीं राज्य लिया? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कहेंगे, वे कहते हैं, आह चास्मान महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तुम अर्हति। उग्रसेन महाराज जब सिंहासन पर बैठे तो भगवान ने कहा, हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, हमको कोई भी आज्ञा देने में आप संकोच मत करेंगे, नहीं करेंगे। जजाति महाराज का शाप होने से मैं इस राज्यासन पर नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं जदु महाराज के वंश में जन्म लिया। जदु महाराज ने जवानी नहीं दिया था जजाति को, इसलिए जजाति ने कह दिया तुम्हारे वंश के कोई भी राजा नहीं बनेंगे। भगवान अपने पूर्वज के वचन को निभा रहे। कहते हैं, जजाति शापात् जदु भी नाशितव्यम निर्पाशने। जजाति के शाप के अनुसार जदुवंश में जन्म लिया हुआ कोई भी व्यक्ति निर्पाशन पर नहीं बैठ सकता। तो मई भृत्ये उपासीने भवतो विबुधादयः बलिम हरन्त अवनता किमुतान्ये नराधिपः। मैं आपका भृत्य हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मुझ सेवक के रहने पर देवता भी आपके सामने झुकेंगे, वे आपको उपहार देंगे, फिर किमुत अन्य नराधिपा, अन्य नराधिपा किमुत, फिर अन्य राजा आपके सामने झुकेंगे, आपके बस में हो जाएंगे, इसमें तो कहना ही क्या, देवता भी आपके बस में होंगे, मैं आपका सेवक आपके साथ रहूंगा। भगवान किस तरह आदर करते हैं, समस्त विश्व के नियंता लक्ष्मी जी के भर्तार भगवान उग्रसेन जी के सामने हाथ जोड़ करके रहते हैं हमेशा, और कहते हैं, हे देव, हमें आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। और उग्रसेन जी भगवान की इच्छा को जानकर आज्ञा भी देते थे, ठीक है तुम इधर ये काम करो, ये काम पूरा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और जब उग्रसेन जी का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान अपने समस्त संबंधियों को पुनः मथुरा बुलाए। वे कंस के अत्याचार से अपना भवन, अपना वास स्थान, घर छोड़ करके भाग गए थे अपने संबंधियों के यहाँ। तो सबका पता लगाया भगवान ने और सबको पुनः बुलाया मथुरा में। सर्वान् स्वान् ज्ञाति संबंधान् दिग्भ्यः कंस भयाकुलान् जदु वृष्ण्यन्धक मधु दासार्ह कुकुरादिकान् सभाजितान् समाश्वास्य विदेशावासकर्षितान् न्यवासयत् स्वगेहेषु वित्तैः संतर्प्य विश्वकृत्। जितने भी भगवान के संबंधी थे, जादव जिनकी बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे जदु, वृष्णी, अंधक, मधु, दसार, कुकुर आदि, भगवान ने सबको विदेश से बुलाया। अपना स्थान छोड़कर के वे लोग रह रहे थे अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ इधर उधर, इसलिए विदेशावास कर सीता, विदेश में रहने से वे कृश हो गए थे, दुबले पतले हो गए थे। परदेश कलेश नरेशन को, राजाओं को भी परदेश में क्लेश होता है। परदेश से तात्पर्य है जहां अपना कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है, अपना कोई काम धंधा नहीं है, और पूरे परिवार के साथ गुजारा करना है, घूमना पड़ता है। ऐसी स्थिति रह रह करके हुई है, इतिहास बताता है। तो कंस के अत्याचार से उब करके सब लोग भाग गए थे, तो भगवान उन्हें बुलाए, सभाजितान उनका स्वागत किए, समाश्वास्य खूब आश्वासन दिए, समझाए, और न्यवास्यत स्वगेहेषु उनके अपने अपने घरों में पुनः उनको आवास दिलाए। बीतै संतर्प विश्वकृत, भगवान तो विश्वकृत हैं, विश्व को बनाए हैं, उन्होंने जितना धन चाहिए था संबंधियों को, जादवों को, सब धन की व्यवस्था किए, और उनके घर भी सब दिव्य बन गए। वास्तव में मथुरा चिन्मय नगर है, जड़ जगत का वो नगर नहीं, स्पिरिचुअल सिटी है। तो भगवान के वहां रहने से सब घर चिन्मय हो गए और जादव आकर के सब रहने लगे। कृष्ण शंकर षणभुजैर गुप्ता लब्ध मनोरथः गृहे सुरे मिरे सिद्धा कृष्ण राम गत ज्वरः। कृष्ण और बलराम की भुजाओं से सुरक्षित ये जादव रहने लगे मथुरा में। लब्ध मनोरथः, उनके सारे मनोरथ पूरे हो गए, मन में जो भी अभिलाषाएं थी पूरी हो गई। गृहेशु रेमिरे सिद्धा, वे सब तरह से पूर्ण थे और अपने घरों में बड़े बड़े आराम से रहते थे, विहार करते थे। किसी घर में कोई व्यक्ति हो अपने परिवार में और उसे कोई दुख न हो, न धन का अभाव हो, न शरीर में कोई रोग हो, न बंधुओं में कलह हो, न किसी का भय हो, तो वास्तव में गृहाश्रम भी स्वर्ग है। लेकिन सब प्रकार के असुविधाओं से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम है तो नरक ही है वास्तव में। धन न हो घर में, स्त्री बढ़िया से बात न करती हो, पुत्र घर पर कभी आता ही न हो, केवल कुसंग में बैठा हो इधर उधर, तो गृहाश्रम एक प्रकार से बहुत ही दुखद नरक। परंतु घर में यदि पर्याप्त पैसा है और स्त्री सती है, साध्वी है, पुत्र अनुगामी है, शरीर में रोग नहीं है, किसी का भय नहीं है, और सबके बाद यदि भगवान में मन लग चुका है, भगवान का भजन हो रहा है घर में, तो गृहाश्रम वास्तव में स्वर्ग है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कुछ भक्तों ने इंग्लैंड में, प्रभुपाद जी इंग्लैंड में बैठे थे, ऐसे कन्वर्सेशन हो रहा था, तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या हम नरक में भी प्रचार कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते, कर तो रहे हो, कर रहे। प्रभुपाद जी ने कहा कि नरक में भी इतना ठंडा नहीं पड़ता है जितना यहां पड़ रहा है। ऐसे कहे, नरक में इतना कोल्ड नहीं है जितना यहां कोल्ड है। जाड़ा का दिन रहा होगा तो मनुष्य समझता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सुख से हैं, स्वर्ग में हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन यदि भगवान का भजन नहीं है तो सब नरक ही है वास्तव में। भौतिक सुविधा क्या करे, और भौतिक सुविधा भी नहीं है। प्रभुपाद जी कहने का आशय था कि जब इतना कठिन जाड़ा है तो ये भी सुविधा क्या है, दुख होता है। तो भगवान ने समस्त परिकरों को, यादवों को बुलाया, उन्हें बसाया। जिस नगर में भगवान रोज घूमते होंगे, यादवों के बीच बैठते होंगे, कितना सुखी होंगे। कृष्ण राम गत ज्वरा, कृष्ण और राम के कारण उनका ज्वर चला गया। ज्वर मतलब चिंता, कंस का त्रास सदा के लिए चला गया। बहुत ही सुंदर बात सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, विक्षंतो अहरह प्रीता मुकुंद बदनाम भुजम। अहरह, वे समस्त जादव मथुरा निवासी मुकुंद बदनाम भुजम अहरह विक्षंत, प्रतिदिन जब तक साथ रहता था तब तक वे सब मुकुंद बदनाम भुजम विक्षंत, श्री कृष्ण के मुख कमल को ही देखते रहते थे। इतना भगवान सुंदर थे, कोई भी वृद्ध या बालक या स्त्री पुरुष सब देखते रहते थे। विक्षंत, विक्षंत विशेषण इक्षंत, बहुत लालसा से श्री कृष्ण के मुख पर देखते रहते थे। कथम भूतम बदनाम भुजम नित्यम प्रमुदितम, और श्री कृष्ण का बदनाम भुज कैसा था, नित्यम प्रमुदितम प्रकर्षण मुदितम, नित्य खिला रहता था, भगवान हमेशा आनंद में रहता था। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो हमेशा खुश रहता है। कभी तमोगुण आता है, नींद आ जाती है, कभी क्रोध आता है, कभी कुछ आता है। अपने ही स्वजन से कभी कभी आदमी कह देता है इस समय हमसे बात मत करो, हमारा मूड ठीक नहीं है। भगवान ऐसे कभी नहीं है कि किसी दिन उनका मूड ठीक नहीं है और उनके पास कोई न जा पावे या किसी दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, ऐसा भगवान नहीं है। उनको चेकअप कराना है, हमको अपॉइंटमेंट लिए हैं। भगवान ऐसे नहीं है। नित्यं प्रमुदितम, क्योंकि भगवान नक्ष सिख तक चिदघन है, स्प्रिट ही है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए उनमें रोग और दुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं। नित्य प्रमुदित रहते, वास्तव में इसी को भगवान कहते हैं। जब भगवान ही दुखी हो जाए तब क्या उसकी शरण दूसरा कोई लेगा। कभी कभी कोई व्यक्ति जाता है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास, धन की दृष्टि से श्रेष्ठ है जैसे, तो पहले वो देखना चाहता है क्या कहाँ है, किस मूड में है, इस समय मिलूं कि नहीं मिलूं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, आप किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं। एक बार तो भृगु जी गए मिलने के लिए भगवान से, वो परीक्षा ले रहे थे। वास्तव में घटना ऐसी घटी कि सरस्वती नदी के तीर पर कुछ ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, तो आपस में विवाद बढ़ा कि तीन देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। सब लोग जानते थे कि भगवान श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी लोक में प्रख्यात करने के लिए भृगु जी को उन लोगों ने कहा कि आप परीक्षा लेकर आइए। तो भृगु जी चले परीक्षा लेने के लिए। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं, तो हर एक समय तो साष्टांग दंडवत करते थे ब्रह्मा जी को। आज परीक्षा लेनी थी ब्रह्मा जी के धैर्य की और अक्रोध की, तो उनको प्रणाम नहीं किया, सीधे गए। और पिताजी अपेक्षा करते थे कि प्रणाम करेगा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ कि पता नहीं कहां से इसकी आदत बिगड़ गई, अब प्रणाम करना भी छोड़ दिया। भीतर बहुत क्रोध हुआ मन में, लेकिन एक दूसरा अज्ञान उत्पन्न हुआ, क्या करें, पुत्र है, अगर हम डांटेंगे भी तो सारे जगत में बेइज्जती फैलेगी कि इनका ही बेटा ऐसे हो गया, तो इसलिए वो डांटे नहीं, चुपचाप रहे। तो पहला तो यह था क्रोध होना, ये अपूर्णता थी। जो व्यक्ति अपूर्ण है उसी में क्रोध आता है, उसकी कोई कामना पूरी नहीं हुई है इसीलिए क्रोध होता है। सम्मान चाहिए था ब्रह्मा जी को, क्रोध हुआ और मोह उत्पन्न हुआ कि मेरा बेटा है। ये परीक्षा हो गई। इसके बाद भृगु जी गए कैलाश, भगवान शिव इनके भाई लगते। तो भगवान शिव ने देखा कि भृगु जी आए हैं, हमारे भाई आए हैं, तो वे उठ करके चले मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए। तो उनको आते हुए देख करके भृगु जी ने कहा, चल हट, अपना स्वरूप नहीं देखता है, आ रहा है मिलने के लिए। हड्डी लगाया है, मुंडमाल, सांप लगाया है, राख लगाया है, ऐसे तुम छूने लायक भी नहीं, आकर मिलना चाहता। उन्होंने बाणी से बड़ा तिरस्कार किया, पिशाच कहीं के, चलो हटो, कभी नहाना ना धोना, श्मशान में रहना है। भगवान शिव को प्रचंड क्रोध होगा और उठाए त्रिशूल और सोचे कि अब इसको जान से ही मार देंगे। मारने के लिए चले, लेकिन पार्वती जी ने चरण पकड़ करके कहा, छोड़ दीजिए भाई हैं, गलती हो गई, तो समझाए तो मान गए। और भृगु जी गए वैकुंठ। वैकुंठ गए तो उस समय भगवान शेष सज्जा पर लेटे हुए थे और श्री जी चरण दबा रहे थे। देखिए कितनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं, जा करके भगवान के छाती में लात मार है, आलसी कहीं के, हमेशा सोए रहते हैं। इस तरह से कहा उन्होंने। भगवान तो उठे, उठ करके बेड से नीचे हो गए और भृगु जी के चरण को पकड़कर सहलाने लगे हाथ से कि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके कोमल चरण कमल में घाव लग गया होगा, मुझे आपके आने का पता नहीं था, नहीं तो मैं आपका स्वागत किया होता, बहुत कृपा किए, आपके आगमन से यह वैकुंठ धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरा देह पवित्र हो गया। इन भगवान बार बार चरण सहलाने लगे। यह दृश्य देख कर सुनकर भृगु जी रोने लगे कि आंखों से आंसू बहने लगा। इसको भगवान कहते हैं यह व्यक्ति पूर्ण है, कोई क्रोध नहीं, कामना नहीं, कुछ नहीं। और जिसमें क्रोध आ जाए और कुछ कामना हो जाए तो वो भगवान कैसे है। अब आकर भृगु जी ने सारा इतिहास कहा ऋषियों के समाज में, तो सबों ने जिनको डाउट था पहले वो लोग भी मान लिए कि वास्तव में भाई भगवान तो भगवान, विष्णु ही भगवान है, सबने स्वीकार कर लिया। तो नित्यम प्रमुदितम पर मैं यह कह रहा हूं कि भगवान हमेशा प्रसन्न रहते और उनकी अभिलाषा रहती है कि कोई हमारे पास आवे, हमसे कुछ मांगे। इस संसार में तो लोग ऐसे मुंह लटकाए रहते हैं कि उनसे कोई मांगे ना है ना, भिखमंगों को आते हैं देखते हैं तो दरवाजा करके बंद कर लेते हैं। भगवान की यही इच्छा रहती है कि कोई हमसे मांगे। इतना अपार वैभव है कि भगवान को देने से वो घटने वाला नहीं है, वो नित्य बढ़ता रहता। नित्यम प्रमुदितम श्रीमत सदय स्मित वीक्षणम। और श्री कृष्ण कैसे रहते हैं मथुरा में, स्नेह भरी मुस्कान से युक्त उनका मुखमंडल रहता है। स्नेह और स्मित से देखते हैं कृष्ण किसी पर। इस कारण से जब सब लोग कृष्ण को देखते हैं तो तत्र प्रवयसो प्यासन जुवानोति बलौजस पिबन्तो क्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधामुह। मुकुंद के मुखाम्बुज सुधा का पान करते रहते हैं मथुरा के लोग, इसीलिए वहां के प्रवयस अतिशय वृद्ध लोग भी फिर से पूर्ण युवक हो गए थे। अति बलौजस, देखिए भगवान के दर्शन का प्रभाव। मुकुंद के बदनामबुज सुधा को, अमृत को पी करके, मतलब रूप को देख देख करके प्रवयस है अपि, जिनका प्रकृष्ट वयस हो चुका था, एक ही 90 वर्ष के भी वृद्ध या 95 वर्ष के वृद्ध भी पुनः जुवान और अति बलौजस, उनका बल बहुत बढ़ गया था और पूर्ण युवक हो गए थे भगवान को देख करके। कुछ खा करके नहीं, कोई काया कल्प करके नहीं, भगवान को देख करके सब युवक हो गए थे। ये है भगवान के शरीर का, भगवान के स्वरूप का विशेषत्व। देखने से आदमी युवक हो जाता। भगवान के रूप में, भगवान के वाणी में, गंध में बहुत शक्ति है। ये सारी सृष्टि जो लहलहा रही है, हरी भरी है, सब बढ़ रहे, वास्तव में भगवान के कारण। गामा विश्व च भूतामि धारयामि हमुजसा, भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी में हूं, मैं ही समस्त प्राणियों को जिला रहा हूं, खिला रहा हूं, धारण कर रहा हूं। और वही साक्षात परब्रह्म परमानंद घन मूर्ति भगवान जहां बैठे हों, चलते हों, खाते हों और उनको रात दिन जो देख रहे हैं, उनमें कैसे बुढ़ापा आ सकती है। जो लोग चाहते हैं कि बहुत दिन हम युवक रहें, उनको बहुत देर तक भगवान पर देखना चाहिए। वास्तव में युवक हो जाते हैं, यह कोई भावुकता की बात नहीं कही जा रही है। भगवान के दर्शन में वो शक्ति है। मंदिर में आना चाहिए, मंदिर में आने से ये तो लाभ होता है कि हम भगवान को देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि भगवान हमको देख लेते हैं वे दृष्टि डालते हैं। कोई कह, एक बार हमसे एक व्यक्ति पूछा कि हम मान लीजिए मंदिर में आए और मंदिर में हमारा मन इधर उधर है, हमने कहा तुम्हारा मन इधर उधर रहेगा ना, भगवान का मन इधर उधर नहीं हो सकता, वो तो तुमको देखते ही होंगे तो भगवान हमको देखते हैं और उनकी दृष्टि पड़ने से वह भक्त सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सफल जीवन होगा। इस प्राकृत जगत में भी कई ऐसे जीव हैं जो केवल देख करके सुखी कर देते हैं किसी को। जैसे कहा गया है कि मछली अपने अंडों को देख करके पोसती है, छूती नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल से ऐसे देखती है और अंडा बढ़ता है। अगर मछली न देखे तो अंडा नहीं बढ़ेगा। कछुआ स्मरण करता है अपने अंडे का, और उसके केवल स्मरण करने से अंडे बढ़ते रहते हैं। और पक्षी जब अंडे देते हैं तो वे अपने पंख की छाया करते हैं और अपने पैर से सहलाते रहते हैं, भीतर इंजेक्ट कुछ नहीं करते हैं, केवल ऊपर से सहलाने से अंडे बढ़ते रहते हैं। तो जब प्राकृत जीव भी देख करके या सोच करके या हाथ पैर से सहला करके अपने अंडे को बढ़ा सकते हैं, तो वही प्रभु यदि किसी पर देखें वह कितना फ्लावरिस्ट होगा, वह कितना सुखी रहेगा। इसीलिए आना चाहिए मंदिर में कि भगवान हमको देख। एक बार की सच्ची घटना है, मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी शरणानंद जी जो वृंदावन में रहते थे, दूसरी जगह वृंदावन में कभी कभी आते थे, तो जब वृंदावन में रहते थे तो बांके बिहारी जी का दर्शन करने रोज जाते थे, और वो जन्म से ही अंधे थे, सूर थे। एक दिन कुछ नवजुवकों ने उनसे परिहास किया, स्वामी जी आपको तो दिखाई नहीं पड़ता है, आप क्यों आते हैं बांके बिहारी मंदिर में? तो उन्होंने कहा कि बांके बिहारी जी भी अंधे हो गए क्या? मैं अंधा हूं ना, वो तो अंधे नहीं है ना, वे हमको देख लेते हैं। मैं इसीलिए आता हूं कि हमारे प्रभु हमको देख लें कि ये सेवक हाजिरी दिया है, आ गया है। तो मैं उनको नहीं देख सकता, लेकिन वे तो देख सकते हैं ना। इसलिए भी मंदिर में आना चाहिए कि भगवान हमको देखें, उनकी दृष्टि से ही सृष्टि हुई है, ऐसा शास्त्र कहता है। प्रकृति पर उन्होंने ईक्षण किया, देखा, और प्रकृति सारे जगत को रच दी। भगवान की दृष्टि में बहुत शक्ति है। कितना देर अपने घर में बैठे रहते हैं इधर उधर, मंदिर में आने में पैर में लगता है कि पहाड़ बांध दिया गया। और जबकि भगवान ने इतनी सुविधा दिया है, फास्ट चलने वाली कार दिया है, सब दिया है, फिर भी बहुत कम लोग आते हैं मंदिर। आना चाहिए दौड़ दौड़ करके, और अपने घर पर भी भगवान को रख सकते हैं, वहां वो दृष्टि डालेंगे, हम उनको देखें, वे हमको देखें, यही तो भक्ति है। हम उनकी सेवा करें, वे हम पर स्नेह से देखें, उनका देखना ही हमारी सबसे बड़ी सेवा हो गई। इस प्रकार मथुरा में जब भगवान रह रहे थे तो अति वृद्ध लोग भी युवक हो गए थे। सुखदेव गोस्वामी की वाणी पर ध्यान देना चाहिए, किस कारण से? मुकुंद बदनामबुज सुधा को पीने से, श्री कृष्ण के मुख को निहारने से, देखने से सब जवान हो गए। यह अद्भुत जादू, यह है भगवान की विशेषता। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वास्तव में सबसे सुखी व्यक्ति वही है इस जगत में। इसका अनुभव है कुछ लोगों को वास्तव में, कि भगवान के नाम जप में, भगवान के दर्शन में, भगवान की कथा श्रवण में क्या सुख है, वो अनुभव है। ऐसी बात नहीं है कि एक रूटीन मान करके जप करते हैं या कथाएं होती हैं, नहीं, आनंद मिलता है, वह आनंद बाधित करता है निरंतर सुनने के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो भगवान के दर्शन में यह आनंद है। पिबंतो अक्षय मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधा मुहुः। निरंतर बार बार कृष्ण के मुख कमल के अमृत को अक्षय अपने आंखों से पीते रहते थे और अपने कानों से उनकी बात सुनते थे। यह भी अर्थ है, भगवान बोलते होंगे डायरेक्ट, उनकी बात सुनना, उनके साथ घूमना, इससे बूढ़े बूढ़े लोग भी बिल्कुल युवक हो गए थे। अथ नंदम समाशाद्य भगवान देवकी सुतः समकर्षणश्च राजेन्द्र परिस्वज्जेदमु चतुः। ये तो कथा हुई जब मथुरा का फेस्टिवल बीत गया था, तब नंद महाराज और ब्रजवासी वहीं मथुरा में थे, तो भगवान कृष्ण अब उनको ब्रज में भेज रहे हैं। ब्रज से चले थे यह कह करके कि हम परसों आ जाएंगे, आज जा रहे हैं मथुरा, कल उत्सव है, देखेंगे, परसों लौट आएंगे। ये झूठ शिरोमणि। अब देखिए नंद महाराज से क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का असत्य बोलना भी सत्य है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। वास्तव में वो झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर भगवान को कभी इच्छा हो कि मैं झूठ बोलूं तो झूठ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जो बोलेंगे वही सत्य होगा, क्योंकि सत्य बोल रहा है। जैसे सूरज भगवान है, कभी यह इच्छा करें कि रात से भेंट करता कैसी रात होती है, वो रात से भेंट हो ही नहीं सकती है, जहां जाएंगे वहां तो पहले ही दिन हो जाएगा, करोड़ों योजन में दिन पहले ही हो जाएगा। लाख प्रयास करके भी भगवान शिव रात्रि से भेंट नहीं कर सकते, भगवान सूर्य रात्रि से भेंट नहीं कर सकते। इसी तरह भगवान अगर चाहे भी कि मैं झूठ बोलूं तो झूठ नहीं बोल सकते। भगवान चाहे कि हम अज्ञानी हो जाए, नहीं हो सकते, उनका स्वरूप ही ज्ञान घन। तो भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के पास पहुंचकर श्री बलराम जी के साथ उन्हें आलिंगन किए। देखिए यहां उल्टा वर्णन हो रहा है, संकर्षण श्री बलराम और कृष्ण एकांत में नंद महाराज से मिल रहे हैं और किसी के सामने नहीं, और जाकर नंद महाराज को आलिंगन किए। इसका अर्थ है कि नंद महाराज बहुत दुखित थे। क्या क्यों? तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण ब्रज में नहीं लौटेगा, यहां पर इसकी आवश्यकता है और इतना लोग प्रेम कर रहे हैं, वसुदेव जी तो अपना पुत्र ही मान लिए हैं। उनको ये पता नहीं था कि वास्तव में इनके भी पुत्र हैं कृष्ण। देखे तो दंग रह गए कि एकदम पुत्र मान रहे हैं, वे बिल्कुल खिन्न बैठे थे। तो कृष्ण गए और कहे बाबा कह करके उनको हृदय से लगाए, और संकर्षण भी, और कहने लगे पितर युवाभ्याम स्निग्धाभ्याम पोषितौ लालितौ भृशम। हे पिताजी, आप और माँ यशोदा ही वास्तविक हमारे माता पिता है, क्योंकि जन्म देने से क्या होता है, असली में जो पालन करता है पोषण करता है वही माता पिता है। इनके कहने का आशय था कि आप लोगों ने न केवल हमको जन्म दिया, बल्कि जन्म के साथ साथ पालन किया, पोषण किया, ये भाव है उनके पास। भगवान उनके पास ऐसा नहीं कह सकते कि देवकी वसुदेव ने हमको जन्म दिया, नहीं, वो उनके पास कहेंगे। नंद बाबा के पास ही नहीं कह सकते, और चूंकि इसलिए कि वास्तव में इनके यहां उनका जन्म हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता हलादो महामना, ऐसा लिखा गया। तो कहते हैं, हे पिताजी, आप दोनों, मतलब आप और यशोदा, बहुत ही प्रेम किए, पोषितौ लालितौ भृशम। ऐसे कोई भी माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो प्रेम किया वो अन्य माता पिता से अधिक किया। पितरोरप्य अधिका प्रीति, पिता से भी अधिक, माता से भी अधिक प्रीति आप दोनों ने किया। इस शब्द में दो भाव हैं। एक तो यह भाव है कि वास्तव में हमारे माता पिता देव की वसुदेव हैं, लेकिन आप लोगों ने माता पिता से भी अधिक हमारा स्नेह से पालन किया। परंतु भगवान के हृदय में एक अभिप्राय है और नंद जिसे ये कह रहे हैं कि संसार में जितने भी माता पिता हैं, जितना प्रेम से अपने बच्चे का पालन करते हैं, उससे अधिक आप दोनों ने किया है। सामान्य माता पिता आप नहीं हैं, आप बहुत श्रेष्ठ कोटि के वात्सल्य में माता पिता हैं। सपिता साच जननी यौ पुष्णी ताम स्वपुत्रवत। संसार में तो ऐसे कोई भी व्यक्ति पिता है, कोई भी माँ है जिसने पालन किया। इस संसार में देखा जाता है कुछ बच्चे जन्म लेते हैं और उसके माँ को दूध नहीं होता है, चाहे माँ का कभी देहांत हो जाता है तो दूसरी स्त्री दूध पिला करके पोसती है, तो वास्तव में वो माँ है, धात्री कहते हैं, वो माँ है। तो जो पालन करे पोषण करे वही माता पिता है। शिशुन बंध विरुद्ध सृष्टा न कल्प है पोष रक्षण। संसार में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता के द्वारा, बंधुओं के द्वारा त्यक्त हो जाते हैं, चाहे जैसे भी, और ऐसे बच्चों का यदि दूसरा कोई पालन करता है तो वही माँ है, वही पिता। भगवान सिद्धांत बता रहे हैं। जात यूयम ब्रजम तात वयम च स्नेह दुखितान ज्ञातिन वो दृष्ट में श्याम विधाय सुहृदाम सुखम। हे पिताजी, आप ब्रज में जाइए, क्योंकि वहाँ गौओं को देखना घेरना है, गौओं की रक्षा करनी है, आप वहाँ के राजा हैं, आप नहीं जाएंगे तो कई कार्य में वे लोग आपका आदेश नहीं प्राप्त करके किंग कर्तव्य मूढ़ होंगे, तो आप जाइए। वो भी तो हमारे पिता ही हुए, जब आपके भाई हैं तो हमारे पिता ही हुए वे, और वे हमको पुत्र जैसा मानते हैं, इसलिए उनको सुखी करना है, माता देवकी को सुखी करना है और भी बंधुओं को, तो सबको सुखी करके और मैं फिर ब्रज में आऊंगा। आप लोगों को देखने आऊंगा, ये नहीं कह रहे हैं कि रहने आऊंगा। दृष्टु में श्याम, आप लोगों को देखने आऊंगा। नंद बाबा के लिए सबसे बड़ा दुख था कि कृष्ण उनके साथ ब्रज में नहीं जा रहा है। अब तो वो ऐसे उनको लग रहा था कि जैसे मैं मथुरा में अपना प्राण निकाल करके और मृतक शरीर से जाऊंगा, लेकिन वे रोने लगे। परंतु भगवान उनको सांत्वना दिए, हृदय से लगा लिए, मैं जरूर आऊंगा, आप चलें। एवं संत्वैव भगवान नंदम स ब्रजमच्युतः वासोलंकार कुप्यादैर अर्ह्यामास सादरम। इस प्रकार कहकर बहुत सांत्वना दिया कृष्ण ने नंद महाराज को, उन्हें विदा किया। मथुरा से बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा खरीद कर दिया भगवान ने। गांव पड़ता था ब्रजनंद, यहां से जो भी शहर से गांव में जरूरी सामान था भगवान ने सब दिया, बैलगाड़ी पर लादा। क्या क्या दिया कुछ का नाम यहां है। वाश अलंकार कुप्यादे, कुप्यादे का अर्थ बर्तन, पॉट्स, शहर से दिया कपड़ा अलंकार बर्तन आदि भर करके दिया। इतुक्तस्तौ परिसृज्य नंदः प्रणय विह्वलः पूरयन अश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैर्ब्रजं जयौ। इस प्रकार जब कृष्ण ने समझाया तब नंद महाराज कृष्ण का आलिंगन करके रोने लगे। प्रणय विह्वलः पूरयन अश्रुभिर्नेत्रे, उनके दोनों नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे, रोते हुए ब्रज में गए गोपों के साथ। और अब नंद महाराज और ब्रजवासियों के वास्ते में दुख का दिन आ गया, और वो लोग विरह में मरते रहेंगे, और उसमें भी श्री गोपीजन। जहां तहां वर्णन किया गया है शास्त्रों में और हमारे आचार्यों ने भी वर्णन किया है, भगवान के विरह में जो ब्रज की दशा थी वो अद्भुत थी। प्रतिदिन लोग और प्रति क्षण प्रतीक्षा में रहते थे कि अब कृष्ण आएंगे, आज सवेरे आएंगे, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे, ऐसे प्रतीक्षा करते करते समय बीत जाता था। मथुरा की तरफ ही दृष्टि रहती थी, गौओं ने खाना करना छोड़ दिया था, पक्षी तक खाना छोड़ दिए थे, मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार नंद महाराज गए ब्रज में। अब कृष्ण बलराम का किस तरह से उपनयन संस्कार हुआ और वे अवंतिका पढ़ने जाएंगे इसका वर्णन करते हैं। अथ सुरसुतो राजन पुत्रयोः समकारयत् पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद् द्विज संस्कृतिं। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का द्विज संस्कार कराया। द्विज संस्कार का अर्थ है अब कुछ वेद शास्त्र पढ़ेंगे, कुछ शास्त्र पढ़ेंगे। अब तक तो केवल गाय बकरी चराते रहे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। इनको बड़ा अफसोस हो रहा था कि हमारा पुत्र इतना बड़ा हो गया, अब तक केवल गाय चराता था, स्कूल का मुंह नहीं देखा, गुरुकुल में नहीं गया, पढ़ा नहीं। तो जो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसका भविष्य कैसे सुखद रहेगा। इसलिए द्विजाति संस्कार कराए, जनेऊ दिया गया और ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दिया वसुदेव जी ने। कारागृह में रहते समय कृष्ण के जन्म के समय उन्होंने संकल्प किया था 10,000 गाय दान करने का, तो उसको आज पूरा किया। इस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया था वसुदेव जी ने। प्रथम उनके पास एक पैसा नहीं था और वो कह नहीं सकते थे कि कृष्ण का जन्म हुआ है, उत्सव मनाने की बात तो दूर रही। वो जेल में ये कह भी नहीं सकते थे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी 10,000 गाय दान देने का संकल्प कर लिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपना वचन पूरा किया जिसको उन्होंने मन में दिया था। यह कृष्ण राम जन्मर्क्ष मनोदत्ता महामति, महाबुद्धिमान वसुदेव जी जिसको मन में दिए थे उसको आज प्रकट दिए। और संस्कार प्राप्त करने के बाद गर्गाचार्य से गायत्री ग्रहण किए दोनों भाई। और इसके बाद उन्हें गर्गाचार्य ने बहुत ज्ञान दिया। प्रभो सर्व विद्या नाम सर्वज्ञ जगदीश्वरो नान्य सिद्धा मूलक ज्ञानम गुह मानव नरे हितहि। भगवान ज्ञान प्राप्त किए और इसके बाद गुरुकुल में रहने के लिए गए। बिना गुरुकुल में रहे किसी को ज्ञान प्राप्त होता नहीं है, विद्या नहीं मिलती है। पढ़ाई करने के लिए घर से दूर रहना चाहिए, घर पर रहने से पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती। तो भगवान श्री बलराम जी के साथ अब गए अवंतीपुर। अवंती का उज्जैन को कहते हैं, संस्कृत नाम है अवंती का या उज्जैनी। बहुत वर्षों तक उज्जैनी भारतवर्ष की राजधानी रही। मालवा क्षेत्र है उज्जैन, तो वहां गए पढ़ने के लिए। जथो प्रसाद तौ दौ गुरो वृत्ति मनिंदिता ग्राहयंतौ केतौ स्म भक्त्या देव निवादृतौ। वहां गए जो भी ब्रह्मचारी के नियम हैं, जितेंद्रिय रह करके गुरु की सेवा करना और रात दिन पढ़ने में लगे रहना, गुरु जी जो भी बोलते थे सिखाते थे उसको ये दोनों ग्रहण कर लेते थे। इनके शुद्ध भाव से सेवा से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें संपूर्ण वेदों को पढ़ाया और अंगों के सहित वेदों को पढ़ाया, समस्त उपनिषदों को पढ़ाया। इसके साथ ही साथ धनुर्वेद और न्याय नीति शास्त्र तथा राजनीति तथा ब्रह्म विद्या
6 प्रकार की राजनीति पर है और केवल 64 दिन में। एक बार गुरुजी बोल देते थे बस इन दोनों को धारण हो जाता था, वो तो नाटक था, इनको तो सब पहले से ही आता है। वेद शास्त्र सब भगवान का निश्वास है, लेकिन केवल लोग को शिक्षा देने के लिए कि पढ़ना चाहिए, विद्या अर्जित करनी चाहिए, जरूरी है, इसके लिए भगवान ग्रहण कर रहे थे। 64 दिन 64 रात पढ़ते रहे, रात में एक मिनट भी सोए नहीं दोनों भाई। विद्या ऐसे पढ़नी चाहिए, यहां लिखा गया विद्यार्थिना कुतो सुखम, जब विद्या प्राप्त करना चाहता है उसको सुख कैसा, तो जो सुख चाहता है उसे सोच लेना चाहिए कि हमको विद्या से कोई मतलब नहीं, और जिसको विद्या चाहिए उसे सुख के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना है तो खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, वास्तव संसार भूल जाए एकदम। पहले के सब लड़के भोर में पढ़ते थे, हम लोगों के समय तक भोर की पढ़ाई चलती थी, अब तो भोर में कोई नहीं पढ़ते हैं। 12-1 बजे तक टीवी देखते हैं, इसके बाद अब तो सारी पढ़ाई टीवी में आ गई। सब विद्या कहाँ धारण करें, क्या याद रहता है, कुछ भी नहीं, सब तो कंप्यूटर में भरा रहता है, यहां नहीं रहता है कुछ भी, खाली हो गया दिमाग है ना। अब अगर जोड़ना होगा 2-4 सौ इधर उधर तो कुछ काउंटिंग मशीन लेंगे चाहे कुछ करेंगे, ऐसे नहीं है कि जोड़ करके बता देंगे। पहले के लोगों से पूछा जाता था ये श्लोक कहाँ है कैसे, तत्काल बता देते थे, अब आप किसी से पूछिए तो कंप्यूटर चालू करेगा कहाँ पर है वो श्लोक। ये दिमाग चला गया कंप्यूटर में, इसीलिए पढ़ना पड़ता है, रखना पड़ता है बचपन में। हमारे यहाँ गुरु जी थे, भोर में पढ़ाते थे, लड़कों को जब झपकी आती थी तो सबके शिखा को ऊपर रस्सी से बांध देते थे छप्पर से, और जब भी किसी को झपकी आती थी तो ब्रेक जैसे टांगता था, जग जाता था और रटने लगता था, जिस तरह से पढ़ाई होती थी। तो भगवान रात दिन पढ़े, कभी सोए नहीं, रखते रहे। सर्वं नरवर श्रेष्ठौ सर्व विद्या प्रवर्तकौ सकृत निगद मात्रेण तौ संजगृहतुर्नृप। हे महाराज परीक्षित, कृष्ण और बलराम समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, और वास्तव में सर्व विद्या प्रवर्तकौ, समस्त विद्या सब ज्ञान के तो वही आदि उपदेशक हैं, आदि गुरु हैं। सकृत निगद मात्रेण, एक बार केवल उच्चारण करने से सारी विद्या ग्रहण कर लिए। और गुरु जी बहुत तेज रफ्तार से बोलते थे और ये सब ग्रहण कर गए। अहोरात्र ही चतुष्टया संयत्तोतावती कला, रात दिन पढ़े और 64 दिन में 64 विद्या कला सब पढ़ गए कंप्लीट। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा मास्टरशिप कर लिए। जब दोनों लड़के पढ़ लिए और उन्हें इच्छा व्यक्त किया कि अब तो हम पढ़ ही लिए, अब जाना चाहते हैं, तो गुरु दक्षिणाचार्यम गुरु दक्षिणयाचार्यम छंदयामाशतुर नृपम। दोनों भाई हाथ जोड़कर पूछे कि हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, हम आपको क्या दक्षिणा दें। दक्षिणा ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई भीख है, दक्षिणा वास्तव में यह इस गुरु के द्वारा जिसने ज्ञान दिया, जिसने पढ़ाया, उसका एक ऋण होता है, उस ऋण को उतारा जाता है दक्षिणा देकर। आजकल दक्षिणा देने वाले लोग समझ सकते हैं कि हम कृपा कर रहे हैं किसी को, कृपा नहीं कर रहे हैं, आप पर जो ऋण है वो उतारना है, उसको दक्षिणा कहते हैं। और पहले के शिष्य पूछते थे गुरु जी से, कि हम आपको क्या दक्षिणा दें। तो गुरु शिष्य के शक्ति के अनुसार कुछ दक्षिणा मांग लेते थे। आजकल के गुरु से अगर ऐसा शिष्य कहे तो कहेगा तुम सारा धन अभी हमको दे दो। आजकल तो ऐसे सब हो गए। पहले शिष्य कहते थे हम आपकी क्या सेवा करें। जब कृष्ण बलराम ने यह कहा तो गुरु सांदीपनि जी अपनी पत्नी से परामर्श किए इनसे क्या मांगना चाहिए दक्षिणा, क्योंकि ये दोनों तो विलक्षण शिष्य हैं, भाई सामान्य शिष्य नहीं है, इनसे क्या मांगना चाहिए। तो उसकी अपने पुत्र में बहुत ममता थी। पुत्र समुद्र में डूब गया था, एक असुर हर कर ले गया था, पंचजन नाम का असुर। एक बार संदीपनि मुनि गए थे तीर्थ करने तो प्रभास क्षेत्र द्वारका के पास वे गए तो वहीं पर एक पंचजन नाम का असुर समुद्र की धारा को उछालता हुआ आया और बच्चे को लेकर चला गया। तो गुरु जी अपनी पत्नी से परामर्श किए कि क्या करना चाहिए। एक भक्त ने कहा है कि पति को चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण विषय हो तो पत्नी से पूछ करके ही किया करें। तो यहां पर सांदीपनि जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि इन दोनों से क्या गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। तो उसने कहा कि ये तो दोनों भगवान हैं, इनकी अद्भुत शक्ति है, आप ऐसा कीजिए कि जो बेटा मर गया है उसको लाने के लिए कहिए दक्षिणा। तो बहुत भारी दक्षिणा हो गई, मरे हुए को लाना है। क्या संसार में कोई ऐसा है किसी मरे हुए व्यक्ति को ला सकता है? भगवान से गुरु दक्षिणा भी भगवान जैसी मांगी गई ना। मरे हुए को जिला करके लाना है, आज तक ऐसा कोई नहीं कर सकता है, न कोई किया है। जो लोग भगवान की लीलाओं को ठीक से नहीं सुनते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं सुनते हैं, वही उनके चरित्र पर दोषारोपण करते हैं। भगवान ने ये किया वो किया। एक बार एक व्यक्ति बहुत बहस कर रहा था, उसे कहा कि भगवान दूसरे की स्त्रियों का वस्त्र हरण क्यों किए, लड़कियां नहा रही थी उनका वस्त्र चुरा लिए, ये कैसा भगवान क्या। तो मैंने कहा कि और द्रौपदी का करोड़ों मीटर वस्त्र बढ़ा दिए, ये कैसा भगवान क्यों नहीं सोचते हो। तो इस पर वो क्या कहता है, ये हम कैसे माने कि वस्त्र बढ़ा दिए। तो मैंने कहा कैसे मानते हो कि वस्त्र चुरा लिए, वहीं लिखा गया है ना, उसी शास्त्र में लिखा गया है ना। तो कहता हम उसको नहीं मानते, हम इसको मानते। इस पर श्रीपाद शंकराचार्य ने एक न्याय लिखा है अपने वेदांत सूत्र की व्याख्या में कि जो लोग एक ग्रंथ के एक शास्त्र के कुछ बातों को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं तो उनको कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता। उसमें उन्होंने एक दृष्टांत लिखा है अर्ध कुकुट न्याय। कुकुट का अर्थ मुर्गी, मुर्गा। एक आदमी के घर में एक मुर्गी थी। मुर्गी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हेन, हेन, हाँ हेन। मांस खाने में तो चिकन सब जानते ही हैं। तो उसने एक बार सोचा कि हमारे घर में मुर्गी अंडा देती है, अंडा से अंडा बेच करके हम परिवार को चलाते हैं, बहुत अच्छा पक्षी है, और खास करके इसका जो पिछला भाग है वो बड़ा उपाध्याय है, बहुत आमदनी हो रही, लेकिन अगला भाग खर्चीला है। इसका जो सिर है वो उसको दाना चुगाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। इसका जो मुख है वो एक्सपेंसिव है, पिछला भाग बड़ा प्रोडक्टिव है, बड़ा अच्छा है। तो उसने सोचा कि इसका अगला भाग काट देना चाहिए, खर्चा बच जाएगा, अंडा आता रहेगा। तो उसने एक दिन उस पक्षी का मुर्गी का गला काट दिया। गला काटते हैं तो अंडा आना भी बंद हो गया, तो मर गई, खत्म हो गई। तो इसी तरह से जो लोग शास्त्रों के एक अंश को मानते हैं दूसरे को नहीं मानते हैं तो अर्ध कुकुट की तरह उनको अंडा नहीं मिलेगा, अर्थ नहीं ले पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं पर भी विचार तो करना चाहिए ना। मरे हुए गुरुपुत्र को ला दिए, जब अपनी पत्नी से परामर्श कर लिए तब आकर के कहे कृष्ण बलराम तथेत्यथारुह्य महारथौ रथम प्रभाषमाशाद दुरंत विक्रमौ। गुरु जी ने कहा कि बेटा हमारा बच्चा मर गया था कुछ साल पहले, हमारी बड़ी इच्छा है कि उसको तुम लोग ला दो। इतना कहते ही भगवान कृष्ण और बलराम ने कहा ठीक, और ये कह करके वे विशाल रथ पर चढ़े। विशाल रथ पर चढ़ करके पश्चिम दिशा की ओर गए और प्रभास क्षेत्र में गए, समुद्र के पास, समुद्र के तट पर बैठे तो समुद्र मूर्तिमान रूप धारण करके आया भगवान के पास, प्रणाम किया। प्रणाम किया तो भगवान ने कहा तमाह भगवान आसु गुरुपुत्र प्रदीयता, शीघ्र गुरु जी के पुत्र को लाओ। समुद्र को आज्ञा दी जा रही, यो असा विहतया ग्रस्तो बालको महतोर्मिड़ा। गुरु जी ने कहा है कि महान तरंगों के साथ तुमने उनके पुत्र को ले लिया था, इसलिए लाओ। तो समुद्र उवाचर, समुद्र ने कहा नैवारहा समहं देव दैत्य पंच जनो महान अंतर जल चर कृष्ण शंख रूप धरो सुर। हे देव, हे पूज्य, मैंने आपके गुरुपुत्र का हरण नहीं किया है, हमारे भीतर एक पंचजन नाम का असुर रहता है और शंख के रूप में रहता है, वही आपके गुरुपुत्र का हरण किया। वो जल में ही रहता है। यह सुन करके दोनों भाई जल में प्रवेश किए, समुद्र में, अथाह जल में घुसे कूदे। जलमावेश तम हत्वा नापस्य दुर्भकम्, जा करके भीतर उस पंचजन असुर का वध किए, लेकिन उसके पेट में बच्चा नहीं मिला। अजीब बात, बच्चा तो पच गया होगा, खत्म हो गया, मिले क्या? लेकिन शायद भगवान ने सोचा कि वो रखा होगा पेट में, तो मारे उधर फाड़ कर देखे तो उसमें नहीं था। तो उसके पेट में से एक शंख निकला जो बहुत सुंदर चमक रहा था, और भगवान ने बजा करके देखा तो अद्भुत बज रहा था। तो इसी पंचजन शंख को भगवान ने ले लिया, उसको पांचजन्य कहते हैं, पंचजन से उत्पन्न होने के कारण उसको पांचजन्य कहा जाता है। तो भगवान आज तक वो शंख धारण करते हैं, पांचजन्य में हृषिकेश देव दत्तम धनंजय, उस शंख को लिए। इसके बाद वहां नहीं मिला, तब भगवान ने उसी शंख को बजाते हुए जमराज जी के यहां गए। गत्रा जनार्दना शंखम प्रदमऊ सहलांगुल, और हलाय से बलराम जी भी साथ में गए। शंख की आवाज सुनकर भगवान जमराज जी आए, कहां का शंख बज रहा है, उनके घर पर बज रहा था। आए, भगवान की बहुत पूजा किए, श्री बलराम जी के भी महती पूजा किए, और कहे नमः कृष्णम, नमः कृष्ण सर्वभूताशयालयम लीला मनुष्य हे विष्णु जुवयो करवाम किम। लीला करने के लिए मनुष्य विग्रह प्रकट करने वाले, हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं धन्य हो गया आप मेरे घर पर आए। भगवान ने कहा कि हमारे गुरु जी का पुत्र आपके लोक में आया है, आपने मारा है। भगवान एक बात कह रहे हैं कि गुरु पुत्र को दीजिए, कर्म के अनुसार आया है, आपका कोई दोष नहीं है, उसका कर्म होगा, शरीर छूटने का आ गया, आप दीजिए। यद्यपि यहां लाना उसके कर्म के अनुसार था, लेकिन मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा का पालन कीजिए और दीजिए। तब जमराज जी ने उस बच्चे को दिया, भगवान की पूजा किया और विदा किया, तो अपने गुरुपुत्र को लेकर दोनों भाई आए और दिए दक्षिणा। तब गुरु जी ने कहा, गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए, दोनों भाइयों ने पूछा था पहले कि हम गुरु दक्षिणा क्या दें, अब गुरु जी प्रसन्न होकर के पूछ रहे हैं बेटा तुम वर मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा। अरे जो तुम्हारे मरे हुए पुत्र को ला रहा है वो क्या मांगेगा, लेकिन ये भी स्नेह है गुरु का। देखिए एक तरफ तो जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन दूसरे तरफ जानते हैं कि हमारा विद्यार्थी है, हमारा शिष्य है, इसको आशीर्वाद देना। तो वे कुछ बोले नहीं दोनों भाई, उन्होंने कहा कि गुरु जी जो भी आपको अच्छा लगे आप आशीर्वाद दीजिए। तब गुरु जी कहते हैं सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रियः, हे पुत्रों, हे वत्स, सब प्रकार से तुमने गुरु दक्षिणा चुकाया, गुरु के प्रति जो कर्तव्य होता है तुमने पूरा किया। तुम्हारे जैसा शिष्य हो यदि किसी गुरु का, तो उस गुरु के लिए कौन सी कामना अवशिष्ट रह सकती है। गच्छतम स्वगृहं वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी, हे वीरो आप घर जाओ, तुम्हारा पावन जस सारे जगत में फैलेगा, तुम दोनों बहुत बड़ा बड़ा कर्म करोगे, ये गुरु का आशीर्वाद। पावनी कीर्ति फैलेगी चारों तरफ, और हमने जो तुम्हें वेद पढ़ाया है वे वेद शास्त्र कभी भी विस्मृत नहीं होंगे तुमसे, यहां तक कि इस जन्म में तो रहेंगे ही हैं, आगे भी वे याद रहेंगे। ये आशीर्वाद है, ये तो भगवान का स्वरूप है, वो ज्ञान घन है। देखिए पढ़ाने वाले के आशीर्वाद से ही विद्या टिकती है। जो कोई व्यक्ति पढ़ाया है और हृदय से आशीर्वाद दे के विद्या तुम्हारे में टिकी रहे तब टिकती है, नहीं तो विस्मृत हो जाती है। आशीर्वाद बहुत जरूरी है इस जगत में। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए वेद शास्त्र तुम्हें इस जीवन में भी याद रहे और अगले जीवन में भी। इस प्रकार गुरु ने आशीर्वाद दिया, तब गुरु से आज्ञा लेकर और वज और हवा के वेग से चलने वाले रथ पर बैठकर दोनों भाई पुनः मथुरा आ गए। और अब आए तो जैसे रेल सीटी देते हुए चलती है, वैसे वे लोग पांच जन शंख बजाते आ रहे थे मथुरा बहुत दूर से। उन लोग सुने तो कहीं इतना सुंदर शंख कौन बजा रहा है, बड़ा हर्ष हुआ। देखिए तो विजय प्राप्त करके, विद्या पढ़ करके और गुरु दक्षिणा चुका करके दोनों भाई पुनः मथुरा आ गए। समनंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनौ अपश्यन्तो बहुहानि नष्ट लब्ध धनाइव। मथुरा की प्रजा को, जनता को इतना सुख हुआ कृष्ण और राम को देखकर, लगा कि जैसे बहुत दिनों से धन नष्ट हो गया था और पुनः नष्ट धन मिल गया, और फिर कृष्ण के मुख को देखेंगे पिएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे। इसके बाद भगवान उद्धव जी को भेजेंगे ब्रज में और अक्रूर जी को हस्तिनापुर। ये दो कथाएं इसके बाद, लेकिन मैंने इस बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम की मथुरा लीला को लिया था, यह कथा आज यहाँ पूरी हो रही है। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस कथा के आयोजन में भाग लिया, सुना। वास्तव में यही जीवन है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कहने और सुनने से उनके साथ रहने का एक संयोग मिलता है। भगवान की इस तरह से याद करनी चाहिए। और सामूहिक कर्तव्य तो पूरा हुआ, लेकिन व्यक्तिगत कर्तव्य तो चालू हुआ। आज सबको पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम, कुछ समय तो जरूर पढ़ना चाहिए। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी तो पढ़े। हमें तो बड़ा आनंद आया, मैं भगवान कृष्ण की लीला में उनके साथ चलता था, कहने में ज्यादा मन लगाना पड़ता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और विशेषकर सुनील माधव प्रभु जी को जिनकी अध्यक्षता में इस समय यह मंदिर सुंदर ढंग से चल रहा है, निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि विश्वंभर प्रभु जी इस बार रहे यहाँ। मुझे लॉस एंजलिस में ही पता लग गया था कि वे रहेंगे इस बार। और भी जो भक्त आए सबको धन्यवाद है। हरे कृष्ण। और ऊपर कर दीजिए माइक, और ऊपर माइक कर दीजिए, उनको झुक कर बोलना पड़ेगा।
हरे कृष्णा। देखिए अभी भागवत की आरती से पहले सब लोग बैठ जाए, क्योंकि जिन जिन भक्तों को अपनी कुछ शब्द महाराज जी के लिए कहने हैं, क्योंकि हमने इतना
भागवत के लिए, भागवत के लिए हमारे
जी के लिए, लेकिन आपने भागवत के दर्शन हमें कराए हैं, तो उसके लिए अभी सुनील माधव जी पहले कुछ शब्द कहेंगे, महाराज जी कहेंगे, और भी जिन जिन भक्तों को दो शब्द कहने हो वो सब कह सकते हैं बारी बारी से आकर, और इसके लिए जरा थोड़ी देर से काम करिए, उसके बाद आरती होगी, फिर महाराज का साथ देंगे। हरे
कृष्ण। खड़ा कर लीजिए ऊपर। हाँ ठीक, इधर इधर हो गया, मुख उधर खींचिए।
हमारा
बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमें मिला किसी राजा गोविंद महाराज जी पूरा शिकार मंदिर में पधारे और हमें श्रीमद भागवत की अमृत वाणी का पाठ कराया था। वैसे भारतवर्ष में सभी जानते हैं श्रीमद भागवत ग्रंथ को, लेकिन जब भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा भागवत की कथा का श्रवण करने को मिलता है तो उसका सच्चा आनंद और उसका सच्चा लाभ मिल सकता है और यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। वृंदावन में महाराज जी हमेशा भागवत की कथा का पाठ कराते हैं और बड़े बड़े इस्कॉन के बड़े भक्तगण सब एकत्रित होते हैं और सारी दुनिया से आ करके भागवत की कथा का श्रवण करते हैं। ये महाराज जी की एक वरदान है हम पर, उनका ये प्रेम और अनुकंपा है कि हमें यहाँ दूर अमेरिका में आकर के ये अपना लाभ दे रहे हैं। तो हम मेरी फैमिली जो है लॉस एंजेलिस हो गए, वो दोनों जो मेरे जमाई हैं वो भी महाराज से बहुत ही इनके भक्त हैं और इनकी सेवा का उनसे भी ज़्यादा वो सेवा का लाभ उठाते हैं, इसका मुझे बहुत आनंद है। श्री प्रभुपाद के अग्रगण्य शिष्यों में महाराज जी हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनके चरण कमलों में कि हमें भागवत से सच्ची सच्ची शिक्षा मिले, भगवान के प्रति कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो और हमेशा इनकी कथा सुनते रहे। हरे कृष्ण।
मैं राधा गोविंद महाराज जी के बारे में कुछ अधिक कह पाऊँ ये मेरी क्षमता नहीं है, छोटा में बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी दो शब्द कहने की कोशिश करता हूँ। महाराज को मैंने 3 साल पहले यही मंदिर में पहली बार सुना था और मेरी पहले दिन ही ऐसी इच्छा हुई कि मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि किसी न किसी तरह से मुझे रोज आने का अवसर मिलता रहे। हम लोग यहाँ से करीब 45 मील दूर रहते हैं और डाउन टाउन में काम के लिए आते हैं और फिर वहाँ से वापस जाना यहाँ आना बहुत मुश्किल सा लगता था क्योंकि 6 से 8:30 बजे तक का टाइम, लेकिन हमने भगवान से विनती करी और भगवान इस बात को आप सच मानिए, अगर आप सच्चे दिल से किसी अच्छी चीज की इच्छा भगवान से करेंगे तो भगवान उसको जरूर पूरा करेंगे। तो रोज हर रोज हमारा बेटा उस वक्त वहां से गाड़ी लेके आता था, गांव गांव से हमें पिकअप करके यहाँ लाता था और हम हर रोज उनका जो बहुत ही मीठे शब्दों में श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं उसका आनंद ले पाया। और 2 साल पहले जब महाराज आए थे यहाँ तो उस वक्त हम हिंदुस्तान में गए हुए थे तो उनके भागवत कथा का आनंद हम नहीं ले सके, लेकिन इस साल फिर से हमें यह आनंद प्राप्त हुआ है और जितना जितना सुनते हैं उतनी ही इच्छा बढ़ती जाती है। इसीलिए हम बस यही विनती करते हैं कि महाराज इसी तरह से हर साल हो सके तो साल में 1 से ज़्यादा बार आप यहाँ आने का हम सब लोगों पर कृपा करें और इस बार तो नहीं हो सका लेकिन अगले वर्ष जब भी अगली बार आए तो हमारे घर पर भी एक छोटा सा प्रोग्राम जरूर करें।
धन्यवाद।
Especially in Krishna's
सब बंदे इसके निकल जाए और उसके अंदर
Yeah.